భగవతి వాసుదేవాయ నమో భగవతి వాసుదేవాయ నమో భగవతి వాసుదేవాయ కృష్ణస్తు గృహకృత్యేషు వ్యగ్రహాయ మాతరీ ప్రభు అద్రాక్షిదర్జునౌ పూర్వం గుహ్యకౌ ధనదాత్మజౌ పురా నారద శాపేన వృక్షతాం ప్రాపితౌ మదాత్ నల్కూ వర్మణి గ్రీవౌ ఇతి ఖ్యాతౌ శ్రియాన్వితౌ రాజవాచ కథ్యతాం భగవన్నేతత్తయో శాపస్య కారణం యత్తద్విగర్హితం కర్మ జనా వా దేవర్షేస్తమః श्रीकृष्ण उखल में बंधे बंधे दो अर्जुन वृक्षों का उद्धार किए जब माँ अपने घर के कामों में लग गई तो भगवान श्रीकृष्ण ने देखा कि ये दो अर्जुन के वृक्ष हैं खड़े हैं तो भगवान तो जानते थे कि ये दोनों वृक्ष पूर्व जन्म में कुबेर जी के पुत्र रहे हैं। कुबेर जी 8 लोकपालों में एक लोकपाल हैं, इस विश्व के व्यवस्थापक और संपूर्ण धन के स्वामी हैं। इनको धनद कहते हैं। देवताओं को जो भी धन की जरूरत होती है तो कुबेर जी देते हैं सबको। ये कोषाध्यक्ष हैं स्वर्गलोक के, इसीलिए इनको धनद कहते हैं, धनपति। इनके दो पुत्र थे, कुबेर जी देवता हैं और इनके दो पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव पूर्व काल में नारद जी के श्राप से वृक्षताम प्राप्त हो, वृक्षत्व को प्राप्त हो गए, वृक्ष हो गए। बहुत नीचे गिरना पड़ा इन्हें, बाहरी दृष्टि से तो ये बहुत नीचे गिरे लेकिन तत्वतः इनका बहुत बड़ा विकास हुआ, इनकी उन्नति हुई। तो पूरा नारद साप है ना, नारद जी के साप से। श्रीमद् भागवतम में अनेक स्थानों पर साप और वरदान का वर्णन है। इस जीवन में हमें महान पुरुषों का आशीर्वाद लेना चाहिए, कभी ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जिससे किसी के मुख से हमारे लिए साप निकले। साप से बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, गजेंद्र साप से हुए थे, इंद्रदुम्न महाराज भूहू नाम का गंधर्व ग्राह हो गया था, महाराज परीक्षित साप से सातवें दिन मरने वाले। कई बातें साप से हो गए, साप से वशिष्ठ जी मर गए, साप से जनक जी मर गए, ऐसा वर्णन है कई जगहों पर। तो नारद जी ने इन्हें साप दिया कि वृक्ष हो जाओ। क्यों साप दिया? ये मद में थे, देवता थे और देवताओं में भी बहुत श्रेष्ठ देवता के पुत्र, बहुत ऊंची स्थिति है, मनुष्यों से करोड़ों गुना हायर पोजीशन है देवताओं का, और उसमें भी ये धनद के पुत्र थे, फिर भी ऐसा कुकर्म किए जिससे नारद जी ने इन्हें शाप दिया। तो इस पर महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं, हम लोग यहाँ से कथा प्रारंभ कर रहे हैं। राजोवाच कथ्यताम भगवन ने तयो शापस्य कारणम, कि हे भगवान, हे सर्वज्ञ सुखदेव जी, आप तयो शापस्य कारणम कथ्यताम, आप उन दोनों के नलकुवर और मणिग्रीव के शाप का कारण बताइए। जब तक विगर्हितम कर्म, उन्होंने ऐसा कौन सा विगर्हित निंदनीय कर्म किया कि देवर्षि नारद के मन में भी तमह आ गया। तमह का अर्थ होता है क्रोध, ये तम क्रोध आता है तमोगुण और रजोगुण से, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव, क्रोध उसमें भी क्रोध जो है वो तमोगुण प्रधान होता है। तमह का अर्थ होता है अज्ञान, हम लोग जो इस संसार में क्रोध करते हैं तो कोई न कोई हमारे काम में, हमारे इंद्रिय तृप्ति में बाधा होती है, तब हमारे भीतर क्रोध का उदय होता है। लेकिन नारद जी तो ऐसे हैं नहीं, वो तो प्रकृति के तीनों गुणों से पार हैं, उनके हृदय में विशुद्ध सत्व का उद्रेक रहता है, भगवान हमेशा स्फुरित रहते हैं। जैसे टीवी के पर्दे पर, स्क्रीन पर कोई चित्र साफ आता रहता है, वैसे नारद जी के हृदय पर हमेशा भगवान उदित रहते हैं। उन्हें ध्यान करना नहीं पड़ता है, उन्हें मन में जोर लगा करके चिंतन नहीं करना पड़ता है, भगवान उनके हृदय में अपने आप स्फुरित होते रहते हैं। तो उस हृदय में क्रोध कैसे हो सकता है? इतने महान वैष्णव के हृदय में क्रोध कैसे संभव है? क्या उन्होंने गलत काम किया था? नलकुवर और मणिग्रीव ने कौन सा निंदनीय नीच कर्म किया कि देवर्षि नारद के हृदय में भी क्रोध आ गया? निश्चित है कि यह क्रोध उनके हित के लिए हुआ। जैसे माता पिता कभी क्रोध करते हैं अपने बच्चे पर, तो उनका वह क्रोध बच्चे का कभी अनिष्ट करने वाला नहीं होता है, वो सर्वदा हित करने के लिए ही क्रोध आएगा। तो वह क्रोध वास्तव में क्रोध नहीं होता है, वह उनका स्नेह ही क्रोध बनकर आता है। कोई पिताजी को क्रोधित देखकर कहे कि अरे ये तो बैरी हो गए, अपने पुत्र के बैरी हो गए, बैरी नहीं हो गए। कभी कभी वह स्नेह गार होकर क्रोध का रूप धारण करता है। जैसे माँ यशोदा, कल कथा बीती थी, कृष्ण को मारने के लिए छड़ी लेकर आ रही है, बांध रही है, लेकिन वह घनीभूत गार है, स्नेह ही क्रोध के रूप में आ रहा है। तो दूध पिलाने में और कृष्ण पर तमाचा लगाने में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है, क्योंकि उसका धरातल एक है, प्रेम ही इस तरह से होता है। कभी प्रिया अपनी पत्नी यदि मान कर जाए, बोले नहीं, रुस जाए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह क्रोध है, अब प्रेमहीनता का सूचक, वह प्रेम ही क्रोध के रूप क्रोध का रूप धारण करता है। तो उच्च कोटि के वैष्णवों के हृदय में जो क्रोध होता है किसी के प्रति, तो उनका स्नेह ही क्रोध के रूप में परिणत होता है, वे हित करना चाहते। ये सिद्धांत है, इस लोक में भी ये उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। जैसे माँ का क्रोध बच्चे के प्रति, या प्रिया का क्रोध अपने पति के प्रति, उसमें प्रेम के अलावा कोई कुछ नहीं होता है। कई दिन तक कुछ तो पति और पत्नी ऐसे होते हैं, बोलते नहीं, रोज खाते हैं, एक ही संग रहते हैं, लेकिन बोलते नहीं, ऐसा भी देखा गया। तो इस तरह से नारद जी के हृदय में जो क्रोध उत्पन्न हो रहा है, वह भक्ति है, वह दिव्य है, ट्रांसडेंटल मैनिफेस्टेशन है उनके मन का दिव्य। फिर प्रश्न है कि किस तरह से उन्हें क्रोध हो गया, ऐसा मतलब उनका स्नेह जो था क्रोध के रूप में कैसे व्यक्त हुआ, ये प्रश्न का बीज है। तो सुखदेव गोस्वामी इसका उत्तर देते हैं। रुद्रस्य अनुचरो भूत्वा सुदृप्तौ धनदात्मजौ। नलकुबर और मणिग्रीव एक तो धनदात्मजौ, एक तो धनद के आत्मज थे, बहुत धनी व्यक्ति के पुत्र थे, और धनी में भी किसी मनुष्य के पुत्र नहीं, देवता के पुत्र थे, और उसमें भी धनद के पुत्र थे। तो अब कहना ही नहीं कि इनके पास कितना पैसा होगा और दुनिया का भोग भोगने की इनको कितनी शक्ति होगी, और जन्म हुआ ऊंचे कुल में, देवता में, पेरेंट मिले बहुत हाई धनी, और उस पर भी इनका पोजीशन बहुत बड़ा हो गया इस जगत में। ये रुद्र अनुचर हो, भगवान रुद्र के अनुचर हो गए, अब तो कहना ही नहीं कि कितना इनका मत बढ़ेगा। अब भगवान शिव का पर्सनल अपना आदमी कोई हो जाए तो उसके सामने बोलने वाला दुनिया में कौन रहेगा? तो रुद्रस्य अनुचर भूत्वा, रुद्र के अनुचर हो गए, रुद्र इस जगत में सबसे बड़े हैं, भगवान विष्णु के बाद शिव जी हैं। यद्यपि ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, लेकिन क्वालिफिकेशन में ब्रह्मा जी से बड़े हैं भगवान शिव। इनकी सर्वत्र पूजा होती है। तो आप विचार कीजिए, जन्म बहुत बड़े व्यक्ति से और बहुत बड़ा धनी व्यक्ति, और उस पर भी पोजीशन इतना बड़ा हो गया कि आजकल के राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर उनके आगे करोड़वे अंश के बराबर भी नहीं। शिव जी का पर्सनल अनुचर बन जाना ये बहुत बड़ी बात है। ये हो गया इसलिए सुदृप्तल दृप्त हो गए। दृप्त का अर्थ होता है निरंकुश। अब कोई कंट्रोल इनके ऊपर रहा नहीं, कोई बोल नहीं सकता था, कह नहीं सकता था कि तुम ये अनुचित काम कर रहे हो। तो बहुत बड़े व्यक्ति का बर्द हस्त आ गया इनके सिर पर, शिव जी का। तो ये प्रायः कैलाश में रहते थे, और यह भी बात प्रसिद्ध है कि कुबेर जी में और भगवान शिव में बहुत मित्रता है, बहुत गाढ़े मित्र है कुबेर जी। ऐसे भगवान शिव अपने घर में कुछ नहीं रखते हैं, वे निर्धनता का जीवन व्यतीत करते हैं। एक उनका घर भी नहीं है, वो वट वृक्ष के नीचे रहते हैं। गृहस्थ लेकिन घर नहीं बनाए हैं अपने लिए, कोई अपार्टमेंट कोई फ्लैट कुछ भी नहीं है इनका। और काम क्या करते हैं, रात दिन राम राम रटते रहते हैं। तुम अपनी राम राम दिन रात सादर जप हुआ न गया रात, रात दिन राम राम जपते रहते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। देवता दानव सभी इनको मानते हैं, इनकी शरण में आते हैं। तो ऐसे महान शिव जी के पास लोग रहते थे कैलाश में। कैलाश रूप बने रम्य मंदा के नियम मदोत कटौ, ये सर्वदा मदिरा पीते थे। ध्यान रखना चाहिए कि स्वर्गीय मदिरा इस धरती की मदिरा से दूसरी वस्तु है। ये थर्ड क्लास की मदिरा इधर जो लोग पीते हैं वो वहां नहीं है। स्वर्ग में यहाँ की चीजें कुछ भी नहीं बिकती है, कुछ भी नहीं जाता है। तो देख ही रहे, यहाँ से कुछ भी ऊपर नहीं जाता है, है कि नहीं? कुछ भी नहीं यहाँ से जाता है। इस पृथ्वी पर भले एक देश से दूसरे देश में कुछ ट्रांसपोर्ट हो या इम्पोर्ट हो, लेकिन स्वर्ग से कुछ भी नहीं आना जाना होता। और ऊपर से स्वर्ग, जब स्वर्ग से देवता लोग मनुष्यों को देखते हैं तो उन्हें थू थू आती है कि कितना कुरूप है, एक पिशाच जैसे दिखते हैं स्वर्ग से, इतना अधिक सुंदर है देवता लोग। ये पृथ्वी पर आते हैं तो पृथ्वी पर पैर नहीं रखते हैं, इस पृथ्वी पर लोग पैर नहीं रखते, ऊपर ही चलते हैं, उनकी पलके नहीं गिरती। अब तो आना जाना भी बंद कर दिए, महाराज परीक्षित तक को लोग आए, अब आने लायक रहा नहीं। हम लोग भागवत में पढ़ते हैं एक बार उर्वशी आई इस पृथ्वी पर, तो उर्वशी स्वर्ग की सबसे सुंदरी देवी है, भगवान नर नारायण के आंखों से प्रकट हुई। मित्रा और वरुण दो ऋषि उसके साथ संग करना चाहते थे स्वर्ग में, तो उन लोगों ने प्रस्ताव डाला उससे, तो वो रिफ्यूज कर दी। इस पर ऋषियों ने साफ दिया कि तुमको मनुष्य भोगेगा, एक प्रकार से दंड दिया ऋषियों ने कि तुम, हम ऋषियों का देवताओं का प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर रही हो तो जाओ तुमको मनुष्य भोगेंगे, ये दंड था। मतलब जैसे मनुष्य में किसी को दंड दिया जाए, तुम मेरी बात नहीं मानती हो तो जाओ तुमको सुअर भोगेंगे, ऐसे मान लीजिए कह दिया जाए। तो यह एक बहुत भारी दंड हुआ। तो स्वर्ग में किसी को गिराया जाता है तो कहा जाता जाओ मनुष्य लोक में जाओ, नरक में जाओ, इस देवताओं के समाज से हटो। तो उर्वशी को साफ हो गया, साफ हो गया तो बेचारी अब सोचने लगी कि कहाँ जाऊं, जब जाना ही है पृथ्वी पर मनुष्य भाव में आ जाना है तो सबसे बेस्ट मनुष्य को चुनना चाहिए, उसने ये सोचा। तो महाराज पुरुरुआ के पास आई, ये भागवत में कथा है। महाराज पुरुरुआ के पास आई तो उसने शर्त किया, महाराज से तीन शर्त किया, उसमें दो शर्त बड़ा महत्वपूर्ण है। उसने कहा कि महाराज मैं आपके पास रहूंगी लेकिन मैं कभी भी आपको नग्न नहीं देखना चाहती, इस पृथ्वी पर लोग नग्न घुमा करते हैं कभी कभी, देवता लोग कभी नग्न नहीं रहते, देवता का मतलब है शरीर ढक करके रहना, ढक कर रहना अच्छा से। तो उसने कहा कि केवल प्राइवेट संघ के अतिरिक्त मैं आपको कभी भी नग्न नहीं देखना चाहूंगी। पहली शर्त है जिस दिन नग्न देख लूंगी उसी दिन मैं चले जाऊंगी। उसने कहा नहीं, वो तो ठक छल करने आई थी, उसको साल भर एनी हाउ रहना था, लेकिन वो ऐसा प्रस्ताव रखी जैसे महाराज को भ्रम हो गया कि ये तो जीवन भर मेरे साथ रहेगी। स्त्रियां ऐसा कपट करती, ये उर्वशी स्त्री जाति की है, तो कहती है कि हमारी और आपकी प्रीति शाश्वत रहेगी, तो आप हमारे सामने नग्न मत होइएगा। और दूसरी बात है कि महाराज मैं घी के अलावा और कुछ नहीं खाऊंगी, पृथ्वी का कोई भी पदार्थ मैं खाऊंगी नहीं। देवलोक में खा करके आई थी तो यहाँ का भोजन कैसे खाती, मनुष्य लोक में रहना हुआ है। लेकिन उसने कहा कि साफ कहा कि मेरा आहार घी होगा, ऐसा नहीं कोई तेल डालडा ये सब मैं नहीं खाऊंगी। स्वर्ग लोक में बहुत शुद्ध आहार है, अमृत है, कल्प वृक्ष के फल हैं, जिनमें छिलका और गुठली का नामो निशान नहीं, वो रस हो जाते हैं पूरा, देवता लोग ऐसा खाते। तो ये शर्त उसने रखा, तो इसके द्वारा यह सिद्ध होता है कि देवताओं का स्टैंडर्ड बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है। और कभी कभी भागवत में उसे दिखाया गया, तो ये रुद्र के अनुचर हो गए, देवता थे, कैलाश के उपवन में प्राय विहार करते थे, धाम में, भगवान शिव के धाम में थे, लेकिन धाम में रहकर भी इनका आचरण बड़ा उठपटांग था। स्त्रियों को लेकर के, नवजोती स्त्रियों को लेकर के बस उपवन में और नदी में विहार करना यही इनका काम था, वहां भजन वजन से कोई मतलब नहीं था। ऐसे नलकुबर और मणिग्रीव इधर भी देखे जाते हैं, जाते हैं संडे को मंदिर में, लेकिन मंदिर से मतलब नहीं होता है, कई ज्योति लड़कियों के साथ घुमा करते हैं मंदिर में भी। तो ये देवता होकर के भी, कैलाश में रह करके, भगवान शिव जैसे महान भागवत पुरुष के पास रह कर भी कैलाश के रम में, उपवन में स्त्रियों के साथ घुमा करते थे। अच्छा, स्त्रियों का वर्णन करते हैं, स्त्री जनई ही अनुगायत भी, स्त्रियां अनुगान करती थी। अनुगान, अनुगान का अर्थ है फॉलो करके गाना, ये भी गा रहे थे तो वो गा रही थी। इस संसार में यही तो देखा जाता है, पुरुष स्त्रियों के बारे में गाते हैं, तुम ऐसी हो, ये हो, वो हो, और स्त्रियां पुरुष के बारे में गाती है, इसको अनुगान कहते हैं। प्राय सिनेमा सॉन्ग में यही होता है, कोई स्त्री पुरुष के विषय में गा रही है और पुरुष स्त्री के विषय में गाते है, यही बस गान, और यही गाते गाते मर जाते हैं, नरक में जाते हैं। तो भगवान का गुण गाने के लिए जीवन मिला है, न कि स्त्री पुरुष को गावे और पुरुष स्त्री को गावे और इसी में बस जीवन बीत जाए। गाने में, देखने में, छूने में बस जीवन जा रहा है। अपने अपने घरों में अपना चित्र जितना सजा भजा कर आदमी रखा है, भगवान का चित्र उतना नहीं रखा है। किसी किसी वैष्णव के घर में भगवान का चित्र बहुत अच्छा से है, क्रिया ही देवताओं के लोक में भी हो रहा है। तो इस प्रकार वे लोग थे कैलाश में, और उसमें भी कैलाश के चारों तरफ गंगा जी बहती हैं, तीर्थ में थे, भगवान के धाम में थे, लेकिन वारुणी मदिराम पीतवा, वारुणी मदिरा खूब ले लिए थे, पीते थे। जब आदमी के पास धन हो जाता है तो वह तीन काम जरूर चालू करता है, यदि उस पर अंकुश न रहे तो। एक तो स्त्रियों के साथ मनमाना विहार करता है, क्योंकि धन के बल से वो किसी भी स्त्री को अपने चंगुल में फंसा सकता है, एक तो ये होता है, और दूसरा द्युतम जुआ, और तीसरा आसव मदिरा पे, जो उसको उन्मत्त कर दे। तो ये तीर्थ में थे, लेकिन बावड़ी मदिरा पी लिया, और इसके कारण मदा घोरणित लोचन, मद से इनकी आंखें घूमने लगी, घूम रही थी, भूल करके भी भगवान के धाम में तीर्थ में ये सब काम नहीं करना चाहिए। लेकिन अब क्या कहा जाए, बहुत धनी का पुत्र होने के कारण और शिव जी का पर्सनल एसोसिएट हो जाने के कारण इनका अभिमान बढ़ गया और ये धर्म मर्यादा का त्याग कर दिए। तो मद से आघूर्णित नेत्र हो गए। स्त्रियां गा रही थी इनके बारे में, ये गा रही थी स्त्रियों के बारे में, चिर तो पुष्पित बने और पुष्पित वन में घूमने लगे। यहाँ पुष्पित वन से तात्पर्य है कि सुगंधित हवा चल रहे थे, पुष्प खिले हुए थे, पक्षी गा रहे थे, इसलिए इनकी काम वासना और सौ गुना बढ़ रही थी और स्त्रियों को छूना गाना लिंगन करना और इस तरह से घूम रहे थे। ये देवता की दशा, श्रेष्ठ देवता की इस स्थिति में ये थे। और इसके बाद क्या किए, उपवन में घूमते 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 अब इनके मन में ये इच्छा हुई कि अब जल विहार करें। जल विहार करने के लिए स्त्रियां भी अपना कपड़ा खोल करके पूरा रखती और ये भी अपना कपड़ा खोल करके रखती, आवेश में ही करने लगे। और इसके बाद गंगा जी में नग्न चले स्नान करने, इसका मतलब एक कपड़ा लेकर आए नहीं थे लेकिन हो गई इच्छा नहाने की, जल विहार कर, पहले वन विहार किए इसके बाद अब जल विहार करने लगे नग्न। स्त्रियां इन पर जल उलिछती थी और ये स्त्रियों पर जल उछल उछालते थे, गाते थे हमें छुओ ये छुओ, और इस तरह से जल में जल क्रीड़ा होने लगी। ये बिल्कुल अपने को भूल गए थे, उस समय भी पी करके मतवा लेते। अंत प्रविष्ट गंगा एम अम्भोज बन राजनी, गंगा जी में कमलों की पंक्तियां खिली हुई थी, कमल बहुत खिले हुए थे। तो ऐसे गंगा जी में प्रवेश किए, चिक्री रतु ज्योति भी, और ज्योति स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करने लगे जैसे गजा विवाह करेड़ो जी, जैसे दो गजराज अन्य हथिनियों के साथ विहार करते हैं जल में, ऐसे ये दोनों विहार करने लगे। हाथी जब हथिनियों के साथ होता है तो पानी ले लेकर के सुन में और हथिनियों पर फब्बारा छोड़ता है, स्नान कराता है। हम लोग देखे हैं इस बात, वो स्नान कराता है जैसे पति अपने पत्नी को स्नान करावे कर। तो बड़ा सख्त होता है हाथी और दोनों सुन में सुन मिला करके चलते हैं, जल में तैरते हैं, कोई अंकुश नहीं होता उस समय। तो जैसे दो मतवाले गजराज हथिनियों के साथ विहार करते हैं, ऐसे ही जल में विहार करने लगे। अब देखिए क्या घटना घटी, जदृच्छयाच देवर्षिः भगवान तत्र कौरव अपस्य नारदो देवोच्छी बाणौ समबोध्यते। जदृच्छया दैव की प्रेरणा, जदृच्छया का अर्थ बिना किसी प्लान के, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी योजना के देवर्षि नारद जी उस रास्ते से आ गए जहाँ ये लोग नग्न स्नान कर रहे थे। स्नान नहीं कर रहे थे, विहार कर रहे थे, जल विहार उसको कहते हैं। इधर के लड़के तो इस विहार को नहीं जानेंगे, छोटा सा स्विमिंग पूल होता है उसमें वो विहार नहीं हो सकता। नदियों में लड़के विहार करते हैं, बहुत भारी सरोवर में तो विहार कर रहे थे। नारद जी आए तो नारद जी के लिए यहाँ पर देवर्षि और भगवान दो शब्द सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। देवताओं में ऋषि हैं, जैसे मनुष्यों में कुछ ऋषि होते हैं साधु महात्मा, तो नारद जी देवताओं में साधु महात्मा है। वे विवाह नहीं किए, ब्रह्मचारी हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड में भागवत धर्म का प्रचार करते हैं। ब्रह्मा जी के सबसे प्रिय पुत्र नारद जी, और भगवान है, भगवान का अर्थ है सर्वज्ञ, भक्ति देने में समर्थ या किसी का उद्धार करने में समर्थ। यहाँ पर यह अर्थ है कि नलकूबर का उद्धार करने में समर्थ, भगवान का यह अर्थ हुआ, इनमें शक्ति थी। तो उन्होंने देखा अपश्यत और छी बाण समबुद्ध्यत, छी बाण मतलब मन उन्मत्त, उन्होंने देखा कि ये दोनों पी करके बिल्कुल टैंच टंच है, ये पी करके बेहोश हो रहे, समझ गए कि ये लोग पी है, उनकी आंखों से, उनकी चाल से, गान से, समझ गए नारद जी कि ये दोनों पिए हैं, तो उनके हृदय में बड़ी करुणा हुई। तम दृष्ट्वा ब्रीड़िता देव्यो विवस्त्रा शाप संहिता। जो ही नारद जी को स्त्रियों ने देखा, वो देवांगनाएं जब देखी, वो स्वर्ग की देवियां ज्योति स्त्रियां, तो वे तुरंत भयभीत हो गई। भयभीत हो गई कि नारद जी साप दे देंगे। नग्न स्नान करना सोशल अपराध था, ये समाज का अपराध था। तो वे डर गए कि नारद जी तो साप दे देंगे, हम लोग नग्न स्नान कर रही हैं। तो वासांसि पर्यदु शीघ्रम, तो शीघ्र आया करके अपना अपना साड़ी जो भी वस्त्र था सब पहन ली। जिन ही दूर से देखे कि नारद जी आ रहे हैं, तो निकल निकल करके अपना अपना वस्त्र पहन, वो डर गए कि नारद जी साप दे देंगे। कुछ भी है तो सारा संसार साधुओं के कंट्रोल में है। ये नग्न स्नान करने वाली देवी है, डर गई। और नारद जी साफ दे सकते थे कि इसी तरह से नग्न पेड़ हो जाओ, पत्थर हो जाओ, हो जाती। जैसे गौतम जी ने अपनी पत्नी को साफ दे दिया था कि पत्थर हो जाओ, जब तुमको अपने पति में और इंद्र में पहचान नहीं है तो तुम बिल्कुल पत्थर हो, पत्थर हो जाओ। तो पत्थर हो गई थी, बाद में भगवान श्री रामचंद्र के चरण कमलों के संस्पर्श से उसका उद्धार। तो ये स्त्रियां जानती थी साधुओं का प्रभाव, और उसमें भी नारद जी का। यदि नारद जी क्रोध नहीं करते हैं, लेकिन स्त्रियों ने सोचा कि हम लोग इतना पाप कर रही हैं, नग्न स्नान कर रही हैं, तो ये साफ दे सकते हैं। तो भयभीत होकर के और अपना अपना वस्त्र पहन करके सिर नीचे करके खड़ा हो गए। अभी भी इनको भय था कि नारद जी पूछेंगे कि क्यों नग्न स्नान कर रही थी, अभी भयभीत थी। लेकिन कम से कम साड़ी पहन ले, कपड़ा पहन ले। और वे जो दोनों थे, वे नारद जी के आगमन की परवाह नहीं किए, बल्कि उनके मन में ये विचार आया, साधु इस रास्ते से क्यों आए, इसकी क्या जरूरत है, हम लोग यहाँ खेल रहे हैं, विहार कर रहे हैं, तो साधु को दूसरा रास्ता पकड़ कर जाना चाहिए। उनके मन में यह बात आई, इस तरह से किसी को डिस्टर्ब करना, कोई स्पोर्ट्स में है, खेल कूद में है, तो साधु को थोड़ा विचार करके चलना चाहिए, ऐसे क्यों इधर आ गए। वो मन में ये सोच रहे थे, कहे नहीं, और पी लिए थे मदिरा, इसलिए उन्मत्त थे, वस्त्र तो पहनना दूर रहा। उनके मन में कुछ दुर्भाव आया, उल्टे दोष बुद्धि आई कि साधु को इस तरफ से आने की क्या जरूरत है, पहले पता लगा लेना चाहिए कि उधर कौन है, कौन स्नान कर रहा है, कर रही है, इधर क्यों आ गए। वे जल से निकले नहीं, नारद जी को प्रणाम नहीं किए, कुछ नहीं किए, ऐसे नंग धड़ंग। और नारद जी ने विचार किया, ओ देवताओं की यह दुर्दशा, अरे कोई मनुष्य ऐसा काम करता, वो भी अफ्रीका अमेरिका का, तो कोई बात नहीं थी। ये देवता होकर के और नग्न स्नान कर रहे, तो नारद जी के हृदय में बड़ी दया उत्पन्न हो गई, इनकी ऐसी दशा नहीं होनी चाहिए। रियली मैं आपसे सत्य कहता हूँ, जब हम लोग विदेश में प्रचार करते हैं, तो अपने देश के भारत के लोगों की जब यहाँ दुर्दशा देखते हैं, तो हम लोगों के हृदय में भी करुणा उत्पन्न होती है। लेकिन हम शक्तिहीन है, नारद जी तो समर्थ थे, उद्धार कर सकते थे, और हम लोग क्या करें, केवल करुणा उत्पन्न होकर के रह जाती है। ओहो, ऐसे गुजराती बच्चे जो हिंदी नहीं समझते, गुजराती नहीं समझते, और उनका भी खान पान सब चिकन खाते हैं। क्या सुंदर शब्द दे दिया गया, मुर्गा मुर्गी के बदले चिकन शब्द दिया गया। ये दशा होती जा रही है। तो नारद जी के हृदय में बहुत भारी करुणा उत्पन्न हो गई कि बेचारे देवता होकर के, बहुत उन्नत पोजीशन का होकर के, और इस दुर्गति में पड़ गए। इतने बड़े महाभागवत के पुत्र हैं, लेकिन आज इनकी दुर्दशा हो गई, तो उनके हृदय में दया उत्पन्न हो गई। तो स्त्रियों ने शीघ्रम वस्त्र पहना, लेकिन विवस्त्रो नहीं वगू ये कहू, तौ दृष्टवा मदिरा मतौ श्री मदांधौ सुरात्मजौ तयोर अनुग्रहार्थाय शापम दासम इदम जगौ। अब नारद जी तयो अनुग्रहार्थाय, उन पर अनुग्रह करने के लिए साप देते हुए यह वचन बोले। नारद जी इस प्रकार बोलने लगे उन पर अनुग्रह करने के लिए। देखिए भागवत का शब्द तयो अनुग्रहार्थाय, तयो दोनों वचन के लिए, उन दोनों पर अनुग्रह करने के लिए यह वचन कहे। इदम जगो, ध्यान रखना चाहिए कि अगस्त जी या दुर्वासा जी जैसा नारद जी क्रोधी नहीं है, यह अनुग्रह करने के लिए साथ दे रहे हैं। अनुग्रह का अर्थ होता है अनुग्रह, किसी को जब हम पकड़ते हैं अपना बनाते हैं तो उसको अनुग्रह कहते हैं, कृपा करते हैं। तो इस प्रकार बोले नारद जी सब कुछ समझ गए कि इनकी दुर्दशा का कारण क्या है, ये क्यों आज इस स्थिति में हो गए हैं, इसका मूल कारण है धाम। नारद जी समझ गए धनद के बेटा है, अधिकांश देखा जाता है कि धनियों के बेटा खराब हो जाते हैं इस संसार में भी देखा जाता है, क्योंकि बच्चों को मनमाना पैसा मिलता है और उनके बिगड़ते देर नहीं लगती है। कहीं भी घूमना, किसी भी लड़की को लेकर के इधर उधर घूमना, खान पान होटल अटेंड करना, कोई बात नहीं, होटल में फीस देना पड़े तब भी पैसा की कमी नहीं है, इस तरह से बिगड़ते। तो नारद जी कहते हैं नहन्यो जुस्तो जोश्यान बुद्धि भ्रंसो रजो गुण स्त्री मदात आभिजात आदि रिजत स्त्री द्युतम आसव। इस संसार में जो व्यक्ति प्रिय विषयों को भोगता है, रूप रस गंध आदि को, तो उसकी बुद्धि को नष्ट करने में सबसे बड़ा कारण है धन। नारद जी कहते उच्च कुल में जन्म लेना ये भी बुद्धि को नष्ट करता है, अधिक पढ़ लिख जाना ये भी बुद्धि को नष्ट करता है, और सुंदर शरीर भी बुद्धि को नष्ट करता है। लेकिन इन तीनों को नारद जी कह रहे हैं कि ये उतना बुद्धि को नष्ट नहीं करते हैं जितना धन बुद्धि को नष्ट करता है। ये देखा जाता है कि उच्च कुल में जन्म लेकर के भी कुछ लोग बहुत नम्र होते हैं, बहुत पढ़ा लिखा होने के बाद भी उनमें सद्गुण देखा जाता है, सुंदर शरीर होने के बाद भी वे अभिमान में नहीं आते, कुछ लोग देखे जाते हैं। लेकिन ज्यादा धन होने के बाद भी सतपथ पर कोई रह जाए ऐसा बिरला कोई दिखाई देता। श्रीमद वक्र में किन के ही प्रभुता बधिर में काय, मृगनयनी के नयन सरह को असला गिन जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्रीमद पा करके कौन नहीं टेढ़ा हो जाता है, उसकी चाल टेढ़ी हो जाती है, सीधा नहीं चलता है। एक नीतिकार ने कहा है कि लक्ष्मी जो है वो 20 की सहोदरी है, 20 भी समुद्र से निकला था और लक्ष्मी जी भी समुद्र से निकले थे। लक्ष्मी जी केवल टेढ़ा अंधा और बहरा बनाकर छोड़ देती है, यही आश्चर्य है कि कैसे मारती नहीं है, जो जान से मार देना चाहिए था क्योंकि ये 20 की बहन है, लेकिन अंधा कर देती है, आदमी देखता नहीं है दूसरे के दुख को। जब बहुत धन हो जाता है तो गरीब आदमी के निर्धन के दुख को आदमी नहीं देख पाता, अंधा हो जाता है और बहरा भी हो जाता है। लोग उसके पास एप्लीकेशन ले जाते हैं, कुछ निवेदन करते हैं, लेकिन सुन ही नहीं पाता है। हम लोग भारतवर्ष में हम देखे हैं जो लोग एमपी के लिए या एमएलए के लिए खड़ा होते हैं वोट में, तो जीतने के पहले वो द्वार द्वार पर वोट मांगते हैं और जब जीत जाते हैं तो फोन भी नहीं उठाते, बहरा हो जाता है, वो सुनते ही नहीं है कि कौन आया है क्या कह रहा है। धन और पद आदमी को बहरा बना देता है, अंधा बना देता है, टेढ़ा बना देता है, और सीधा नहीं देखता है, सीधी चाल से भी नहीं चलता है, क्योंकि ये 20 की बहन है लक्ष्मी। तो इस तरह से स्त्री मदांध उसको कहते हैं, स्त्री मदांध, स्त्री मद से अंधा, अंधा मतलब विवेकहीन, क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, वो आदमी सब भूल जाता है, स्त्री मद से अंधा। एक कवि ने भारतवर्ष में कहा है कि कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिका है, वा पाए वा खाए बौराए नर वा पाए बौराए। कनक नाम का एक पौधा होता है भारतवर्ष में, उसको धतूर कहते हैं, धतूर, उसको खा करके आदमी बौरा हो जाता है, और कनक का सोना भी होता है, तो रहीम कवि जी लिखे हैं, वो कहते हैं कि इस कनक की अपेक्षा, धातुर की अपेक्षा इस कनक में सोना में 100 गुना मादकता है, क्योंकि उसको तो खाने पर आदमी पागल होता है, इसको केवल पाल लेने पर पागल हो जाता है। सोना यदि अपने पास हो जाए तो उसको पाते ही बौरा जाता है। और एक कवि यहाँ तक कहा है कि इस संसार में चाहे गुड़ की बनी मदिरा हो, चाहे गेहूं की बनी मदिरा हो, या फलों की किसी चीज की बनी मदिरा हो, ये कोई भी मदिरा उतना मादकता पैदा नहीं करती है जितना स्त्री, क्योंकि ये सब मदिरा है ये पीने पर मद बढ़ाते हैं, लेकिन स्त्री पर तो केवल नजर पड़ जाने पर मद चढ़ जाता है, आदमी पागल हो जाता है देखते। तो कोई संसार में ऐसा पदार्थ नहीं है पीने का जिसको देखते ही नशा चढ़ जाए। ये सब शास्त्र के उद्गार है वास्तव में, और बात बिल्कुल सत्य है, श्री मद से आदमी अंधा हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता। तो ऐसे इस संसार में जो विषय भोग कर रहे हैं उनकी बुद्धि को नष्ट करने के लिए अन्य बहुत से कारण है, लेकिन सबसे बड़ा कारण है श्री मद, धन का मद। श्री मदाद अभिजात्यादि जत स्त्री द्युतलास हो, क्योंकि जहाँ धन होता है तो वहाँ स्त्री द्युत, द्युतम और आसव, ये तीनों अपने आप आ जाते हैं। धन से आदमी उच्छृंखल स्त्रियों का उपभोग करता है। वास्तव में भगवान ने नियम बनाया, इस संसार में मनुष्य स्त्री रख सकता है कि धर्म मर्यादा के अनुसार किसी का पाणी ग्रहण करे और उसके साथ रहे, ये धर्म के अनुकूल है। भगवान ने गीता में कहा है, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामस में भर्तर सब, हे भर्तर सब, धर्म के अविरुद्ध मतलब अनुकूल जो काम वासना है वो मैं हूँ। तो विवाह करके किसी स्त्री के साथ संतुष्ट रहना यह धर्म है, लेकिन एक स्त्री के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों से संपर्क करना ये सबसे बड़ा अधर्म है इस संसार, ये अधर्म हो जाए। लेकिन जहाँ अति पैसा हो जाता है तो आदमी इस नियम को तोड़ देता है और वह खाने पीने लगता है मनमाना, आसव पीने लगता है। और धन का एक और सबसे बड़ा दोष उत्पन्न होता है, हन्यन्ते पशवो जत्र निर्दये रजितात्म भी, धनी आदमी अजितात्मा हो जाता है, इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रहता है, मन पर कंट्रोल नहीं रहता, तो अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए वह फिर पशुओं की हत्या करता है और कहता है कि पशुओं में सोल नहीं है। ये कहते हैं पशुओं में सोल नहीं है, मतलब तुम सोल का लक्षण ही नहीं जानते, जीव नहीं है पशुओं। तो छोटा बच्चा होता है और बोलता नहीं है, चलता नहीं है, तो उसको भी कह दोगे कि इसमें भी जीव नहीं है, तो पशुओं की हत्या करता है। जितने भी धनी राष्ट्र हैं सब पशु काट काट कर खा रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं। अभी हमने सुना था इंग्लैंड में 4 मिलियन गाय को मारने वाले थे, पता नहीं वो मारे या मारेंगे आगे। वैसे तो बारी बारी से वो मारते ही, लेकिन मास स्लॉटर बहुत बड़े स्केल पर मारने वाले थे, मार रहे होंगे महीने महीने या सप्ताह सप्ताह। जो भी हो, इस तरह से निर्दय ही अजित आत्मा भी, मनुष्य जब धन के मद में निर्दय हो जाता है, अजितेंद्रिय हो जाता है, तो हन्यन्ते पशव जत्र, तब वो पशुओं की हत्या करता है। मनुष्य इस संसार में आसानी से जी सकता है, केवल दूध पीकर या अन्न खा करके, फल खा करके, लेकिन इस जिह्वा को तुष्ट करने के लिए, शरीर को पोषने के लिए वो पशुओं की हत्या करता है। भगवान बहुत सामग्री बनाए हैं इस संसार में, बहुत खाने की चीजें हैं, पशुओं की हत्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब धन के मद में आदमी हो जाता है तो जीव हिंसा करना चालू करता है। इस संसार में बहुत वस्तुएं बनाई गई हैं खाने के लिए, साधारण साधारण वस्तु को खा करके भी शरीर में बल का संचार होता है। एक बार की घटना है, मैं रथ यात्रा में दिल्ली में था, हमारी संस्था की रथ यात्रा निकली थी, तो हम लोग एक ऐसी सड़क से गुजरे जहाँ दोनों तरफ ड्राई फ्रूट्स की दुकानें थी। ड्राई फ्रूट्स दोनों साइड में भारी भारी दुकानें थी, तो मैं अपने मित्र से बात कर रहा था, मैं कहा देखो भगवान कितना बनाए हैं फल, भगवान कृष्ण इतना फल बनाए हैं मनुष्यों को मिल रहा है, ये किसी मिनिस्टर के पेट से नहीं आया है, ये सब धरती से निकल रहा है। तो मैं कह दिया कि भगवान बहुत बनाए हैं, पूरी दुनिया में सब जगह ड्राई फ्रूट्स बिकता होगा, तो भगवान बहुत बनाए हैं। तो भक्त कह दिया, मेरा मित्र था, वो कहा कि नहीं, अगर एक एक आदमी पर इसको बांटा जाए तो बहुत कम पड़ेगा। तो कहने लगा कि भगवान बहुत कम बनाए हैं ड्राई फ्रूट्स। वो कहने लगा, मैं कहा कि बहुत बनाए हैं, तो वो कहता नहीं बहुत कम बनाए हैं, जब सबको बांटा जाए रोज तो ये बहुत कम पड़ेगा। तो मेरे मुख से निकल गया इसीलिए कम बनाए हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, ये फालतू चीज है, इसकी जरूरत नहीं है। तो इस पर चिढ़ गया, रंज हो गया, कहा कि इस मेवा को, इतने सुंदर पदार्थ को आप हो गया। मैं कहा कि वास्तव में आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ड्राई फ्रूट्स की या गीला फ्रूट्स की इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो लगा कहने क्यों नहीं, इसको खा करके मनुष्य का शरीर बलवान होता है, ये होता है, स्वस्थ होता है। तब तक एक बैलगाड़ी आ रही थी और बहुत लोड था और दो बैल उसमें जुटे हुए थे। मैं कहा कि इसमें से इन ये जो बैल हैं इतना भारी बोझ खींच रहे हैं, ये क्या ड्राई फ्रूट्स खाते हैं बताओ? ये ड्राई फ्रूट्स खा करके इतना खींच रहे हैं, और ड्राई फ्रूट्स खाने वालों को गाड़ी में जोतो तो कितना खींचेंगे? तो बिना ड्राई फ्रूट्स खाए भी ये भारी बोझा खींच रहे हैं, घोड़ा हाथी, ये ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, इनके लिए सुपर मार्केट से सब खरीद कर आता है क्या? सिंपल घास खा लेते हैं और फिर भी इतने बलवान है। हमने तो देखा अफ्रीका में कि अफ्रीकन लोग बहुत सिंपल खाते हैं, मकई का भात खाते हैं, नमक थोड़ा सा छिड़क लेते हैं, सब्जी भी नहीं खाते हैं। और हम इंडियन लोग इतना अचार चटनी क्या क्या खाते हैं, लेकिन उनके आगे हम क्या हैं? अगर वे एक ट्रक हैं तो हम मारुति कार हैं। इंडियन लोगों का शरीर ऐसा रहता है, आप तो देखे होंगे। भोजन से कोई अंतर नहीं पड़ता है, सिंपल भोजन से भी आदमी बलवान रह सकता है। एक बहुत बहुत चटनी अचार ये सब खाने से पेट टूट जाता है, हर बल नहीं पड़ता है। तो इस जगत में कोई आवश्यकता नहीं है कि पशुओं की हत्या करके हम जिए, नहीं, ये पाप की कमाई हमारे सिर पर रह जाती है और शरीर भी अजर अमर नहीं हो पाता है। तो नारद जी कहते हैं, कौन लोग पशु की हत्या करते हैं कि मन ने माने इमम देहम अजरा मृत्यु नस्वरम, नस्वरम देहम, इस विनाशी शरीर को अजरा मृत्यु मन ने माने, जो इसको अजर और अमर मान लेते हैं वही पशुओं की हत्या करते हैं। शरीर है नस्वर, चाहे आप इसको पाप करके पोसिए और चाहे धर्म पूर्वक पोसिए, शरीर जाएगा, ये रुकेगा नहीं। इस अमेरिका में भी इतने लोग गाय खा रहे हैं लेकिन बूढ़ों की संख्या उतनी ही है और वो मरने के लिस्ट में है, मरना है ही, लेकिन पाप करके अपने कर्म का फल लेकर के नरक में भोगेंगे, शरीर बचा नहीं पाए। अगर यह बात होती कि चलो पाप करके शरीर बचा लेंगे तो शरीर बचाने के लिए पाप किया जा सकता था, लेकिन बचाएंगे तो नहीं, आखिर ये मरेगा। तो मूर्खता बस कुछ लोग इस शरीर को अजर और अमर मान लेते हैं कि कभी मरने वाला नहीं है और कभी जरा माने बूढ़ा होने वाला नहीं, अजर जीर्ण होने वाला नहीं। लेकिन शरीर का धर्म है शश्वत पतता, श्रीमद् भागवत में लिखा गया ये हमेशा गिर रहा है, निरंतर क्षीण होता जा रहा है। मनुष्य समझता है कि नहीं आज के बाद कल मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, इस महीने में कुछ तबीयत खराब है आगे मैं बिल्कुल पहलवान हो जाऊंगा या बड़ा बड़ा स्वस्थ हो जाऊंगा, या 96 में मेरी कुछ तबीयत खराब रही लेकिन मैं 97 में बिल्कुल अजर अमर हो जाऊंगा, यह मूर्खता है। शरीर हमेशा आज की अपेक्षा कल डाउन हो रहा है, इसका स्वभाव है। नहीं हम समझ लेते हैं कि नहीं नहीं हम स्वस्थ हो जाएंगे, यदि हम बर्गर खाएंगे तो हम मोटा हो जाएंगे। और कभी कभी तो गार्जियन लोगों के मन में, पेरेंट के मन में अज्ञान आता है, मेरा बेटा यदि चिकन खाएगा ये खाएगा तो थोड़ा मोटा हो जाएगा, ये सोचते हैं। ये विचार उठता है पेरेंट्स के मन में और ये बहाना करके वो छोड़ देते हैं, जाने दो जो खाता है मत रोको उसको खाने दो। वाह रे वाह, इस तरह का विचार आता है। तो पाप का भोजन खिला करके हम तो अमर अजर कर नहीं सकते हैं शरीर को, हमारा भविष्य बहुत दुख में हो जाता है, पाप का फल भविष्य में भोगना पड़ता है, नरक में भोगना पड़ता है। दोष सबसे ज्यादा उत्पन्न होता है, पाप उत्पन्न होता है जब हम अपने को अजर अमर मान लेते हैं शरीर को। यदि आदमी मृत्यु पर विचार करे तो इतना पाप नहीं कर सकता है। आज मैं कार में आते समय बातचीत कर रहा था भिखू भाई से कि इस अमेरिका में या विदेश में मरने पर पता नहीं चलता है कि कोई मरा या जिया, लोग इतने भीतर कार में ले जाकर के कहीं क्रिमेशन में जमीन में डाल देते हैं। लेकिन हमारे भारत वर्ष में प्रकट देखते हैं लोग कि आज मर गए, बल्कि अर्थी पर रख करके और राम नाम सत्य है बोलते हुए ले जाते हैं, जिससे दूसरे लोग सावधान होते हैं उस दिन के, अरे बाप रे बाप हमारा भी नंबर आ सकता है इसी तरह। तो यह ज्ञान उत्पन्न होता है, रियली ज्ञान उत्पन्न होता है। और इसके बाद मरने के बाद अपने स्वजनों की मीटिंग होती है, भोज भात होता है, तो किस बेसिस पर कि एक आदमी मर गए, तो इसे ज्ञान खुलता है रियली। भगवान ने गीता में बताया है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, यह एक ज्ञान है। जन्म को देखो, मृत्यु को देखो, व्याधियों को देखो और बुढ़ापा को देखो। आजकल का आदमी नवजुवतियों का चित्र अपने घर में टांग देता है, लेकिन जब बूढ़े का या मरे हुए का टांगेंगे तो दिमाग खुलता रहेगा कि अरे बाप ये हमको होना है। लेकिन आदमी मृत्यु को, बुढ़ापा को, रोग को इग्नोर कर रहा है, यह आज के सभ्यता का दोष है। वास्तव में जो संसार का फैक्ट है उसको अपने सामने रखना चाहिए। भगवान बुद्ध देव बूढ़े को, रोगी को और मृतक को देखकर घर छोड़कर चले गए, यह इतिहास बताता है। तो भिखू भाई बता रहे थे कि यहाँ के लोग डेथ शब्द सुनकर बहुत डरते हैं, इसीलिए किसी मरे हुए आदमी को बाहर नहीं घुमाते, उसको गुप्त रूप से ले जाकर के जमीन में गुप्त कर देते हैं। ये दशा है। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी है कि मृत्यु को प्रकट दिखाया जाता है, बल्कि कोई आदमी घर में मरने वाले होते हैं तो सभी स्वजनों को बुलाया जाता है कि आइए भेंट कीजिए। उस भेंट करने के पीछे भी ज्ञान यह है कि आकर के देखिए कि शरीर और जीवन अनित्य है। मुख्य साइंस ये है, जो हजारों बार पुस्तक पढ़ने से दिमाग नहीं खुलेगा वो देख करके खुल जाता है। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हजारों शब्द के बराबर एक चित्र होता है और हजारों चित्र से बढ़ करके एक मूर्ति होती है, डायरामा। प्रभुपाद जी बताते थे इसलिए डायरामा बनाओ मंदिरों में, और हजारों डायरामा से एक जीवित व्यक्ति ज्यादा असर डालता है। इसकी जरूरत है कि हम हमेशा आंखों के सामने रखें कि मरना है एक दिन, और एक दिन बूढ़ा होना है। कभी भी भीषण रोग हमको आक्रांत कर सकता है, लकवा मार सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है और अंत में मरना पड़ेगा। बहुत भारी दुख होता है मरने में, ये सब देखी हुई बातें। तो अनुदर्शन भगवान गीता में कहते हैं कि इनको निरंतर देखना, ये है ज्ञान। लेकिन जब आदमी इसको भूल जाता है तो शरीर को अजर अमर मान लेता है और इसके लिए पाप करता है, दूसरे का मांस खा करके अपना मांस थोड़ा इंक्रीज करना चाहता है, अपना मांस थोड़ा बढ़ जाए। इतना ज्यादा फालतू एक्स्ट्रा मांस बढ़ाकर करेंगे क्या, ये तो जाएगा नहीं साथ में, देह यही छोड़ना है, चाहे थोड़ा देह पतला हो या मोटा हो। और आयुर्वेद कहता है कि मोटे आदमी कम दिन जीते हैं, पतला आदमी ज्यादा दिन जीवित रहता है, ये देखा गया है परसेंटेज। तो मांस खा करके बहुत मोटा बनने की आवश्यकता नहीं है, पाप चढ़ जाएगा। अंत में शरीर क्या होता है, इसको नारद जी कहते हैं, देव संगीतम अप्यंते कृमि विद्भस्म संगीतम भूत ध्रुव तत्कृते स्वार्थम किम वेद निरयोजता। एक दिन शरीर का नाम देवता होता है, मनुष्य होता है, या राष्ट्रपति होता है, इसी शरीर का नाम एक दिन रखा जाता है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, या कलेक्टर, जज, या इंजीनियर, डॉक्टर। लेकिन एक दिन इस शरीर की क्या दशा हो जाती है, इसका क्या नाम पड़ता है, कृमि बीट भस्म संगीत, कृमि बीट भस्म संगीतम। अगर कोई जीव खा ले हमको, हमारे शरीर को, तो एक दिन बीट संज्ञा हो जाती है, इस जीव का ये मौल हो गया। अगर कोई सियार, कुत्ता, गिद्ध खा जाए तो शरीर का नामो निशान मिट जाता है और उसकी संज्ञा होती है बीट। बीट का अर्थ होता है मौल। और इसको यदि आग में जला दिया जाए, जैसे हिंदू लोग जलाते हैं, भस्म संज्ञा, अंत में राख संज्ञा मिलेगी। आज राष्ट्रपति हैं, कल राख पति हो जाएंगे, तो राख होना है, एक दिन संज्ञा होगी। अथवा जमीन के अंदर कर दिया जाए तो कृमि, हम जर्म्स बन जाते, कीड़े बन जाते, शरीर पूरा कीड़ा हो जाता। लोग कहते हैं कि ये शरीर जो जमीन के अंदर है, तो कयामत के दिन खुदा आएगा और उसमें प्राण डालेगा, और प्राण क्या डालेगा, वो सब कीड़ा हुआ, खत्म हुआ, वो कभी वो दिन नहीं आएगा। और उस दिन आने के पहले जरा शरीर को देखो तो नीचे क्या है। मैं देखा कि इस न्यूयॉर्क में, अमेरिका के बहुत शहरों में मुर्दा बहुत जमीन छेके है, मुर्दों के लिए काफी जमीन है, जीवित आदमी के लिए भाड़ा देना पड़ता है बहुत कड़ा, जब जल्दी घर नहीं मिलता है। जब मैं नैरोबी में था, तो वहां एक दिन अखबार में निकला था, किसी ने यह शिकायत किया राष्ट्रपति के पास, जो भी वहां के मुख्य है, मोई या कोई है, उनके पास शिकायत पहुंचा कि ये जो हिंदुओं का क्रिमेशन है, इससे धुआं निकलता है और धुआं पर्यावरण को, एटमोस्फियर को दूषित करता है, इसलिए इन लोगों को ये कहा जाए कि ये लोग भी जमीन के अंदर डालें, ये जलावे न, क्योंकि इससे धुआं हवा दूषित होती है। तो मोई के पास जब ये बात गई, तो उसने पार्लियामेंट की बैठक में कहा, कुछ रिप्रेजेंटेटिव बनाया, उसने कहा कि आप जाकर पता लगाइए कि हिंदुओं का क्रिमेशन कितना दूर में है। तो जाकर रिपोर्ट दिए, रिपोर्ट देने वाले कि 2 एकड़ में है, और दूसरे लोगों का क्रिमेशन कितना है जरा पता लगाओ। तो आकर पता लगाने वाला लगाया, और हू बहुत छपा था कि दैट इज गोइंग टू बी अनदर नैरोबी। ये निकला था, मुर्दों के लिए एक अलग नैरोबी खड़ा हो रहा है। तो मरमर कर जमीन घेरते जाते हैं। हमारे भारतवर्ष में तो मुसलमानों ने इसी तरह से कब्जा किया, कहीं भी मुर्दा को गाड़ दो, बस कब्जा हो गया। हिंदू संवेदनशील होते हैं, मरने पर क्यों विरोध करें, क्या करें। और लोग जाते थे ग्रुप में मुर्दा को गाड़ने के लिए जमीन, और कोई मर गया है तो हिंदू रोकते नहीं थे, क्या है अब रोके झगड़ा करे, और गाड़ते गाड़ते जमीन दखल करते गए, और आज सिर दर्द बने हुए। तो मरमर कर जमीन दखल करते सब। बाद में उसने कुछ डॉक्टरों को नियुक्त किया मोई ने, कि आप जा करके हिंदुओं के क्रिमेशन की हवा का परीक्षण कीजिए कि क्या उससे पर्यावरण दूषित होता है। तो डॉक्टरों ने रिपोर्ट दिया है कि इससे हवा बिल्कुल दूषित नहीं होती है, और सबसे बेस्ट पद्धति यही है कि जलाया जाए। उन लोगों ने रिपोर्ट दिया, जिसको आज ये लोग स्वीकार करते हैं। इसको हमारे ऋषि मुनि ने करोड़ों वर्ष पहले ही कहा था कि यही पद्धति ठीक है। जलाना ही ठीक है, थोड़े से जमीन में करोड़ों लोगों को जलाया जा सकता है, और नहीं इस तरह से जमीन फेंकते फेंकते तो मर करके पूरी दुनिया कवर कर लेंगे, खेती कहाँ होगी, कहाँ आदमी बसेगा, ये सोचने की बात है। तो जो कुछ भी हो, हमारा यहाँ यह विषय नहीं है, विषय यह है कि शरीर एक दिन वीट हो जाएगा, भस्म हो जाएगा या कृमि हो जाएगा, एक दिन शरीर की दशा होगी, और इन तीन में से एक दशा तो होगी, जलाया जाएगा शरीर तो राख हो जाएगा, या कोई जीव खाएगा तो उसका मल हो जाएगा, या जमीन में जाएगा तो कृमि हो जाएगा। आज चाहे कुछ भी नाम रख लीजिए शरीर का, हम लोगों का सबका भिन्न भिन्न नाम है, हमको भी कोई कहता होगा सन्यासी जी हैं, महाराज जी हैं, लेकिन एक दिन भस्म महाराज तो होना ही है, एक दिन शरीर तो जाएगा, तीन गति में से एक गति प्राप्त होगी। तो इस नासमान शरीर के लिए यदि हम जीवों को सताते हैं, दूसरों को काट करके खाते हैं, तो इसमें क्या स्वार्थ है जीव का, कुछ भी नहीं, निरयो जता, अंत में निरय प्राप्ति होती है, नरक जाना पड़ता है, शरीर भी गया और नरक में गया, शरीर छोड़ करके जाना है। भगवान ने गीता में कहा है कि जो शरीर लेता है उसको शरीर छोड़ना है, और जो शरीर छोड़ता है उसको शरीर लेना है, जातस्य हि ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु, एक ही श्लोक में दो बार ध्रुवम शब्द का प्रयोग भगवान करते हैं। जन्म जो लिया है उसको निश्चित शरीर छोड़ना है, और जो शरीर छोड़ा है उसको दूसरा शरीर लेना है, ये नियम है ध्रुवम, ये अटल सिद्धांत है। यदि हम इस शरीर में पाप करते हैं, मांस वगैरह आदि खाते पीते हैं, तो दूसरा शरीर बहुत दुखद मिलेगा, बहुत हीन शरीर मिलेगा इस पाप के कारण। तो नारद जी कहते हैं स्वार्थम किम, इसमें क्या स्वार्थ है यदि हम दूसरे जीव को खाते हैं सताते हैं, बल्कि वेद निरयो जता, उसमें निरय की प्राप्ति होती है। और देह को आदमी मेरा मानता है, ये मेरा देह है, वास्तव में देह में जो अहम भाव है और देह में जो ममता है वो भी फाल्स है, किसी का देह नहीं है यार। एक देह को कई लोग मेरा मेरा कहते हैं। एक बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने से मरने तक उसको उसके शरीर को कई लोग कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, कई लोगों का लिस्ट गिनाया गया है। तो प्रथम कह रहे देह किमन धातु स्वम, क्या यह शरीर अन्न दे करके पोसने वाले का है? जो व्यक्ति अन्न दिया है, भोजन दिया है जन्म से, तो कहेगा कि मैंने इस शरीर को पोसा है, इसलिए शरीर मेरा है। तो इस पर मां कह सकती है कि नहीं, मैंने इसको अपने पेट में पाला है, इसलिए मेरा है। तो क्या ये माता का शरीर है? ये है किसका? Who is proprietor of this body? यहाँ प्रश्न उठाया गया है। कुछ दिन जन्म लेता है बच्चा तो मां कहती है मेरा बेटा है, मेरा बेटा, और वही बेटा जब किसी सरकारी नौकरी में हो जाता है तो उस डिपार्ट वाले कहते हैं मेरा स्टाफ है, ये मेरा आदमी है, ये पुलिस का आदमी है या इसका आदमी है, ये मेरा आदमी। और जब उसका विवाह हो जाता है तो जिसके साथ विवाह होता है वो लड़की कहती है ही इज माइन, ये मेरा है। ये मेरा मेरा की मुहर लगती जाती है और पहली मुहर मिटती जाती है, और वो कहता भी है, वो कहती है ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर है, या पति कहता है कि ये मेरी है। और वो कहीं अगर सेना में भर्ती हो गया, बॉर्डर पर लड़ने चला गया, तो सरकार कहती है ये मेरा सिपाही है, मेरा है, और वो खरीद लेता है रियली उस शरीर को, 2000-4000 वेतन दे करके महीने में, $2000-4000 यहाँ का स्टैंडर्ड होगा, महीना वेतन दे करके, और सरकार कहती है मेरा शरीर है, तुम बॉर्डर पर खड़ा रहोगे वेतन से, वो शरीर हमारी स्त्री का रहते हुए या माँ का रहते हुए उनका नहीं रह पाता, ये शरीर बेच दिया जाता है। नौकरी करना अपने को बेचने के बराबर ही है, 8 घंटे के लिए हम दूसरे के गुलाम हो जाते हैं, हम उस शरीर का इस्तेमाल दूसरों के लिए करते हैं। तो वह व्यक्ति कहता है कि ये मेरा शरीर है, मैंने इसको इतना डॉलर देकर खरीदा है 8 घंटे के लिए, तो कहता है कि मेरा शरीर है, और मातुर पितुर वह नाना भी कह सकते हैं कि मेरा शरीर है क्योंकि मेरी बेटी के गर्भ से जन्म लिया है। नाना भी कहते हैं कि मेरा नाती है, नानी कहती है कि मेरा शरीर है, और कोई बलपूर्वक रोज बेगार में पकड़ लेता है, बलपूर्वक बिना वेतन के काम कराता है तो वो कहता है मेरा है। और अग्नि सुनो पिबा, और अंत में आग के हवाले ये शरीर जाएगा तो आग कहती है कि ये मेरा है, चाहे तुम कुछ भी करो लेकिन ये मेरा है, मेरे मुख में इसको आना है। इसको तेल चोवा चंदन लगा करके लाखों रुपए का कपड़ा पहना करके चाहे तुम कुछ भी संवारो लेकिन अंत में मेरी लपटों में इसको आना है। अग्नि कहता है, अग्नि सुनो पिवा, और यदि नहीं जलाया जाएगा तो कुत्ते प्रतीक्षा करते कहते हैं चाहे तुम कुछ भी संज्ञा इसको दे दो लेकिन दिस इज माय फूड, ये मेरा भोजन है। तो ये सिद्धांत है इस संसार में कि जो वस्तु अंत में जिसके काम आती है वह उसी की मानी जाती है, ये सिद्धांत है, इसको कंज्यूमर कहते हैं। एक वस्तु कोई भी मैन्युफैक्चर कर रहा हो या दुकान में कोई भी रख रहा हो लेकिन जो उसको खरीद करके कंज्यूम करता है तो उसको माना जाएगा यही वास्तविक उसका अधिकारी है। तो लास्ट में शरीर किसके हक में जाएगा? कुछ दिन माँ कही कि मेरा शरीर है, कुछ दिन पति कहते हैं मेरा शरीर है, पत्नी कहती है मेरा शरीर है, लेकिन घूमते घामते ये शरीर अंत में आग की लपट में जाएगा या कुत्ता के पेट में जाएगा या धरती के अंदर जाएगा। तो शरीर तो उनका हुआ ना। मुझे एक बहुत सुंदर उदाहरण मिला। एक बार मैं लकड़ी खरीदने गया था, लकड़ी समझते ना, वुड, घर बना रहा, मंदिर बन रहा था, तो मैं लकड़ी खरीदने गया, हमारे साथ मेरा चचेरा भाई गया था। तो लकड़ी वाला दाम बताया, तो दाम कुछ अधिक बता रहा था, तो हमारा भाई कहा कि तुम इतना दाम क्यों बता रहे हो लकड़ी का? तो वो कहा कि महाराज आसाम से लकड़ी मंगाया हूं, आसाम से लकड़ी आई है इसलिए इसको लाने में बहुत भाड़ा लग गया है, किराया लग गया। तो हमारा भाई कहता है किराया कुछ भी लगा हो हम किराया थोड़े देंगे। हम किराया नहीं देंगे, लकड़ी का दाम बताओ। तो वो दुकानदार कहा कि लकड़ी आप ले जा रहे हैं, आप भोगेंगे और किराया मैं दूंगा। बताइए, लकड़ी को आप ले जा रहे हैं तो इसको मंगाने में, चीरने में, बनाने में जो खर्च लगा वो आप देंगे ना, क्योंकि आप लकड़ी के मालिक हुए, मैं तो केवल सप्लायर हुआ। अब दुकान में वस्तु रखी गई है, कोई आदमी कहे कि हम पैकेज कर नहीं देंगे, हम सेल टैक्स नहीं देंगे, हम ये नहीं देंगे, कौन देगा? तुम सब खरीद रहे हो, भोगोगे और देगा तुम्हारे लिए दुकानदार। तो दुकानदार यही करने के लिए बैठा है कि सब चीज दिया करे फ्री में तुमको। तो अंत में जो व्यक्ति जिस वस्तु को भोगता है वही उसका अधिकारी माना जाता है। तो ये शरीर अंत में किसका है? ये माँ का नहीं है, ये भाई का नहीं है, ये पत्नी का नहीं है, यह है कुकुर का, कुत्ते का, या आग का, या जमीन का, और कोई अधिकारी नहीं। बीच में 10 वर्ष के लिए मेरा 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 माई 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 करते रहिए लेकिन अंत में शरीर छीन लिया जाएगा और जिसका असली हक है उसको दे दिया जाएगा। स्वेच्छा से ले जाते हैं मरघट में, स्वेच्छा से आग में ले जाकर के जला देते हैं, कहते हैं हे अग्नि देव लीजिए, यू आर कंज्यूमर, और इसको कंज्यूम कीजिए, देना पड़ता है शरीर को। इतना ये बेयर सत्य है, नग्न सत्य है, लेकिन आश्चर्य है लोग इन बातों को समझते क्यों नहीं, और इसे तुच्छ शरीर को पोषने के लिए पाप करते हैं। क्या साधारण भोजन से काम नहीं चल जाएगा? ये खाओ वो खाओ ये खाओ, अमेरिका के स्टोरों में तो मैं देख करके दंग हो जाता हूँ कि इतना खाने का सामान और पीने का, इतनी शीशियां, इतना पैकेट, और जबकि बहुत सुविधा है घर पर, भोजन बनाने के लिए बहुत सुविधा है, गैस है, चूल्हा है, कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्ण महाराज। बहुत सुविधा के बावजूद भी आदमी बहुत गलत गलत वस्तुएं जहां तहां खरीद कर खाता रहता है। जो भी हो, यह शरीर नाशवान है एवं साधारणम देहम अव्यक्त प्रभवाप्ययम को विद्वान आत्मसात कृतो हंति जंतु निर्वृते सतः। इस प्रकार से साधारण देह है। साधारण का अर्थ होता है सबका देह एक समान। इसको पोषने के लिए भगवान वस्तु बनाते हैं। जैसे कोई कार मैन्युफैक्चर करता है तो फैक्ट्री ही बताती है कि इसमें आप डीजल डालेंगे कि पेट्रोल डालेंगे, वहीं से निश्चित हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम कार लाए और पानी डालकर चलाना चालू करते, वहीं से लिखा रहता है कि इसको कैसे चलाएंगे। तो ईश्वर ने शरीर बनाया है, बना करके वेद शास्त्र में सब डायरेक्शन दिया है कि इसमें क्या क्या डालना है, इसमें क्या क्या डालना है। तो डालने वाले पदार्थों में दूध है, घी है, फल है, फूल है और अन्न है। मांस मदिरे डालने के लिए कहीं नहीं लिखा गया। जैसे कोई अपने घर पर कार लावे और उसमें पेट्रोल न डाल करके किरासन तेल डाले या बालू डालने लगे, ये खर पात डाल करके चलाना चालू करे, तो उसे तो भ्रष्ट होना है। इस शरीर में क्या डालना है पहले विचार कर लीजिए कि इसको मैन्युफैक्चर करने वाला क्या डायरेक्शन दिया है भगवत गीता में या वेद शास्त्र में, क्या कहा है खाने के लिए। भगवान ने हमारी सृष्टि करके ये नहीं कह दिया कि जो भी मन करे खाया करना, मांस मदिरा जो भी मन करे वो खाया करना, ऐसा नहीं कहे। ये साधारण देह है सबका। और अव्यक्त प्रभवाप्ययम, यह अव्यक्त से आया है और अव्यक्त में चला जाएगा। अव्यय मैंने नाश, अव्यक्त से प्रभाव हुआ है और अव्यक्त में इसका अव्यय हो जाता है। शरीर नष्ट होने के बाद कहाँ चला गया कुछ पता नहीं चलता है, और कहाँ से ये मिला इसका भी पता नहीं चलता है। पहले व्यक्त नहीं रहता है, जन्म से पहले कुछ भी पता नहीं चलता है कि ये शरीर क्या है, कौन आ रहा है, कौन जीवा रहा है, कितना दिन रहेगा, पहले कुछ पता नहीं रहता है। और मरने के बाद भी अव्यक्त हो जाता है, हवा हवा में, पानी पानी में, आकाश आकाश में, मिट्टी मिट्टी में, जल जल में, इस तरह से आग आग में। पंच महाभूत से शरीर बनता है, पंच महाभूत में भी नष्ट हो जाता है। तो इसको कहते हैं अव्यक्त। भगवान ने गीता ने कहा है अव्यक्ता देनी भूतानी व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधना ने तत्व का परिदेवना। पहले शरीर नहीं था, अव्यक्त था, बाद में भी अव्यक्त हो जाएगा, बीच में केवल व्यक्त है, तो इसमें क्या रोना धोना है। शरीर तो जाएगा, क्यों रो रहे हो। शरीर नशवान है, तो इस नशवान शरीर को पोषने के लिए पाप नहीं करना चाहिए। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो जानता है कि शरीर नश्वर है, तो इस नश्वर शरीर को पोषने के लिए वो जीवों की हत्या कभी नहीं कर सकता है। असतः श्री मदान दस्य दारिद्र्यम परमंजनम आत्मोपमेन भूतानी दरिद्र परम इच्छक है। तो जो श्रीमद से अंधा हो गया है उसकी आंखों में ज्योति डालने के लिए सबसे अच्छा अंजन क्या है, दरिद्रता है। ये नारद जी चुन रहे हैं सबसे बेस्ट मेडिसिन। और श्रीमद से अंधा हुआ है तो धनहीनता से आंख खुल जाएगी, सारा धन उसका छीन लिया जाए, दरिद्र बना दिया जाएगा, तब विवेक हो जाएगा, तब वो देख सकता है कि गरीब लोग कैसे जीवित रहते हैं, तब वो संभाल करके चलने लगेगा। तो कहते हैं असतः श्री मदान्धस्य दारिद्र्यम परम अंजनम, जिसकी आदतें बिगड़ गई है संसार में धन के कारण, अंधा हो गया है, तो दरिद्रता उसके लिए अंजन है। तो दरिद्र होने पर तब अपने समान और दूसरों को देख सकता है, दूसरा व्यक्ति भी कितना कष्ट से जीवित होता है। किसी जीव को मारा जाता है तो उसको कितना कष्ट होता है, जब आदमी गरीब होता है तब उसकी समझ में बात आ जाती है। जब हमारे पैर में कांटा चुभता है तो फिर हम नहीं चाहते हैं कि हमको फिर कांटा चुभे, तो इसी तरह से हम उस व्यथा का अनुभव करके समझ जाते हैं कि दूसरे के शरीर में भी यदि कांटा चुभाया जाएगा तो उसको भी इतना ही दर्द होगा, वो समझ जाता है। और जिसके शरीर में कभी कांटा चुभा नहीं, वो दूसरे के शरीर की व्यथा नहीं जान सकता। जो कभी गरीबी का दुख नहीं देखा वो नहीं समझेगा गरीबों का दुख, श्रीमद से अंधा हो जाता है। दरिद्र व्यक्ति निरस्तंभ होता है, घमंड नहीं होता है, सभी मदों से मुक्त रहता है। मद होगा ही नहीं, धन नहीं रहने पर मद नहीं हो सकता है, हिंसा भी उससे नहीं होती है। पैसा है ही नहीं तो कसाई खाना कैसे चलाएगा। जितना पाप है बड़ा बड़ा सब धनी आदमी करते हैं, वही उसके कंट्रैक्टर है पाप करने के, उनको शक्ति होती है। तो हिंसा भी उनकी चली जाती है और शरीर क्षीण हो जाता है दरिद्र का। अन्न की आकांक्षा रहती है, भोजन की आकांक्षा बनी रहती है, इंद्रियां सूख जाती हैं, इसलिए हिंसा भी चली जाती है। और दूसरा नारद जी कह रहे हैं कि दरिद्र व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि साधु महात्मा उसी के पास जाते हैं, गरीब आदमी के पास जाते हैं। ये नारद जी का उद्गार है, दरिद्र शैव जुज्यन्ते साधव समदर्शिनः। गरीब होने पर सबसे बड़ा लाभ क्या मिलता है कि साधु महात्माओं का संग होता है। आज उल्टा समय आ गया है, तथा कथित सो कॉल्ड साधु सब धनियों के द्वार पर घूमते रहते हैं। वो साधु है नहीं रियली वास्तव, साधु की एक प्रकार से परिभाषा दी गई है कि दरिद्रस्य एव युज्यन्ते साधव समदर्शिनः। साधु गरीब के ही द्वार पर जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे बात सुनेंगे, भगवान की बात सुनेंगे। धनी लोग सुनते नहीं हैं, वो सुनते नहीं है, उनको फुर्सत नहीं होती है, दे हैव नो टाइम टू हियर। तो इसीलिए साधु लोग धनियों के दरवाजे पर नहीं जाते। और साधुओं के संग से क्या लाभ होता है कि संसार की जो उनकी वासना होती है वो भी चली जाती है। गरीब होने पर वासना तो रहती है कि हमको धन हो जाए, हो जाए, वो हो जाए, लेकिन जब साधु का संग होता है तो मान लेते हैं कि हम ठीक है, भगवान हमारे लिए उचित धन दिए हैं, इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। उनकी तृष्णा चली जाती है साधु संग से, और उपवास आदि जो उनको करना पड़ता है यही उनके लिए बड़ा तप होता है। सबसे बड़ा लाभ गरीबों को यह होता है कि उन्हें महात्माओं का संग प्राप्त होता है। और यह सत्य है कि रियली जो महात्मा होते हैं वे गरीबों के यहाँ जाते हैं, धनियों के यहाँ तो जा भी नहीं सकते। ऐसे हम लोग तो हम पर्सनल ये नहीं कह रहे हैं कि हम महात्मा हैं, लेकिन हम एक उदाहरण दे रहे हैं। बंबई में जब बड़े बड़े धनी आदमी के पास जाना होता है तो महीनों से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तो पूछना पड़ता है, तो उधर से फोन आता है, नहीं हम दूसरे वीक में खाली है। कोई इसी से बात करता है फोन पर तो वो बताते हैं कि नहीं हम इस महीने में खाली नहीं, इसमें खाली नहीं है, उसमें खाली नहीं। और किसी गरीब से आप बात कीजिए कि हमारे गुरु जी आपके यहाँ आना चाहते हो, तो वो बेचारा सौभाग्य मानता है, हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारा अहो भाग्य होगा हमारे यहाँ आ जाए, तो तत्काल रिस्पॉन्स मिलता है। और अपनी अपनी अपने पोजिशन के अनुसार वह बेहतर स्वागत करता है। और धनी आदमी तो एक दो सर्वेंट लगा देगा कि साधु आए हैं, इनको खिला पिला दो, हमको फुर्सत नहीं, और लिफाफा में कवर में थोड़ा कुछ दे दिया, बस हो गए, चलो चलो ऐसे कहो, उनको फुर्सत नहीं है भागवत सुनने की। ये देखा जाता क्योंकि धन के कारण इंद्रियों का प्रवाह विषय की ओर रखता था, तो जिसके इंद्रियों की धारा विषय की ओर है उसकी धारा भगवान में कैसे लग सकती, धन इसमें कारण होता है। इसीलिए नारद जी कहते हैं कि सबसे बड़ी औषधि है दरिद्रता। और एक कवि ने तो यहां तक कहा गया है कि दरिद्रता और लक्ष्मी दोनों में दरिद्रता जो है वो अच्छे जगह पर रहती है, विद्वत सत्व निवासिनी, ये विद्वानों के घर में रहती है दरिद्रता। गरीबी विद्वानों के घर में रहती है और लक्ष्मी तो दुराचारियों के घर में रहती है। विद्वत सब निवासी, विद्वानों के घर में दरिद्रता रहती है और सब प्रकार के दोषों को नष्ट करने वाली है, इसलिए दरिद्रता ठीक है। आजकल के गृहस्थ इस बात को सुनेंगे तो भयभीत हो जाएंगे, इस तरह की प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें मुख्य आशय यह है कि आवश्यकता से अधिक धन हमको श्रृंखल बना देता है, इंद्रियों को भोगों में जोत देता है, प्रवाहित आवेश हो जाता है। उतना धन नहीं चाहिए, या धन हो भी तो उसे धर्म में लगाया जाए, भोगने में न लगाया जाए, नहीं तो इंद्रियों को विषयों की तरफ मोड़ देंगे। इसीलिए धनियों के लिए बताया गया, वास्तव में धनियों के पास जो धन है वो गरीबों का धन है, और जगह न रह करके वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है। तो उसे करना क्या चाहिए, तो उसे पुनः गरीबों को लौटाना चाहिए, ये कर्तव्य होता है। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार कहा करते थे इस बात को कि धनियों के पास जो धन है वो सबके पास का थोड़ा थोड़ा जाकर इकट्ठा हो गया है, तो उसको दान द्वारा फिर बिखेर देना चाहिए, फिर गरीबों के पास पहुंचा देना चाहिए, भोजन के रूप में, कपड़ा के रूप में, दवा के रूप में, भगवत प्रसाद के रूप में फिर लौटा देना चाहिए, लौटाते रहना चाहिए। धन आएगा, अपने अपने कर्म से धन आता है, धन को आना ही है, लेकिन उसको लौटा देना चाहिए उचित काम में, धर्म में लगाना चाहिए। तो इस प्रकार नारद जी ने कहा कि देखो ये देवता के पुत्र हैं, श्रीमद से अंधे हैं, लेकिन इन पर मैं कृपा करके इनको वृक्ष योनि में भेज रहा हूं। नारद जी ने कहा अब देवता भी नहीं रहेंगे, मनुष्य नहीं, वृक्ष योनि में, लेकिन मेरे अनुग्रह से और भगवान कृष्ण की दया से इनका जन्म ब्रज भूमि में होगा। यह वास्तव में साप नहीं था, कैलाश से हटा करके वृंदावन में जन्म दिया गया, वृक्ष का शरीर, वृंदावन में वृक्ष का शरीर भी देवलोक के शरीर से कई गुना ज्यादा महत्व रखता है। तो नारद जी कहते हैं कि मेरी कृपा से इनमें अस्थावर जोनी में जाने पर भी स्मृति बनी रहेगी कि हम लोग कौन थे, क्या थे। नारद जी ने ऐसे कहा है, यदि ये वस्त्रहीन है, नहीं समझ रहे हैं, लेकिन और वहां इन्हें भगवान कृष्ण का संग मिलेगा। तो नारद जी साप नहीं दे रहे हैं, अनुग्रह कर रहे हैं, इस तरह से कहे, और वे ये कहे कि भगवान का जब संग होगा तो कृष्ण प्रेम इन्हें मिलेगा, कृष्ण का प्रेम मिलेगा, इसके बाद फिर ये भगवत धाम में चले जाए। तो इस प्रकार नारद जी ने साप दिया, तो ये नल कुबर और मणिग्रीव नंद और जसोदा के आंगन में वृक्ष हो गए। और भगवान जिस दिन बंधे थे, स्वयं तो बंधे थे, लेकिन इन वृक्षों को मुक्त करने की सोचे, घसीटते हुए गए, भगवान ने सोचा कि हमारे परम भक्त नारद जी ने जो वचन कहा है उसे सत्य करना चाहिए, अपने भक्त का उद्गार भगवान सत्य किए, और वृक्ष के निकट से गुजरे और वृक्ष गिर गए। बहुत जोर का शब्द हुआ, सब ब्रजवासी दौड़ करके आए, देख तो तत्काल ही एक घटना घटी, जो ही वृक्ष गिरे तो उसमें से दो दिव्य पुरुष निकले, वही नलकुबर और मणिग्रीव, वो देवता थे, भगवान पृथ्वी पर उखल खसीट रहे थे और वे आकाश में खड़े थे, देवता वो पृथ्वी पर नहीं थे, और उखल में बंधे हुए बालक की स्तुति करने लगे, परिक्रमा करने लगे, मुक्त हो गए। तो बहुत लंबी स्तुति की है, यहाँ स्तुति के कहने का समय मेरे पास नहीं है, उसका एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। नलकुबर और मणिग्रीव कहते हैं कि नारद जी ने हम पर बहुत कृपा की, हे नाथ हमारी वाणी उस समय स्त्रियों का गुण गाने में लगी रहती थी, मदिरा पीकर उन्मत्त हो गए थे, लेकिन अब आपसे यही प्रार्थना है कि हमारी सारी इंद्रियां केवल आपकी सेवा में लगी रहे। तो उसमें कहते हैं, वाणी गुणानुकथने श्रवण कथायाम, हमारी वाणी केवल आपके गुणानुकथन में लगी रहे, हम जहां भी जाएं, किसी भी जोड़ी में जाएं, लेकिन वाणी से आपका वर्णन करें, और श्रवण कथायाम, हमारे दोनों कान आपकी कथा सुनने में लगे रहे, हस्तौच कर्मसु, हमारे हाथ आपकी सेवा में रहे, मनस्तव पादयोर न स्मृत्या, हमारा मन आपके चरण कमलों का स्मरण करे, इसी बालक रूप का, उखल में बंधे रूप का, और हमारा सिर आपको प्रणाम करने में लगा रहे, और हमारी आंखें भक्तों का दर्शन करने में लगी रहे, आपके भक्तों का दर्शन करें इस तरह से, और हमारा शरीर पग इंद्रिय आपके प्रेमियों का चरण स्पर्श करने में लगे। इस तरह से हमारे प्रत्येक अंग आपसे युक्त हो जाए। इस तरह जब दोनों स्तुति की और भगवान से कहे कि हमें आज्ञा दीजिए, हम जहां भी रहे आपके किंकर रहे, आपकी भक्ति में लगे रहे, तो भगवान ने कहा नलकुवर मणि जी से कि मैं जानता था इस बात को पहले से ही, और वास्तव में नारद जी ने तुम दोनों पर कृपा की है। हम जाओ, देखो साधुओं का संग होने पर बंधन रहता ही नहीं है। नारद जी को तुम लोगों ने कुछ दिया नहीं, लेकिन उनका संग ही तुमको मुक्त कर दिया। भगवान अपने भक्तों के संग की बड़ी प्रशंसा करते हैं। अभी नारद ये नहीं कहते कि मेरे संग से तुम मुक्त हो गए, कहते हैं साधु का जब संग होता है तब यही फल प्राप्त होता है। जैसे सूर्य का संग होता है आंखें खुल जाती हैं, अंधकार चला जाता है, ऐसे साधु श्रेष्ठ वैष्णव का संग होने पर अज्ञान नष्ट हो जाता है। तो जाओ, आज से मेरे प्रति तुम्हारी अनन्य भक्ति बनी रहेगी। इतना भगवान कहे तो ये लोग परिक्रमा किए भगवान के, और बच्चे देख रहे थे, और लोग अभी नहीं जुटे थे ब्रजवास, बच्चे देख रहे थे कि दो सिद्ध दो देवता इस छोटे से बालक की स्तुति किए और परिक्रमा कर रहे हैं, तो चले गए। इसके बाद सब लोग जुटे, चटाचट शब्द हुआ तो सब लोग जुटे, क्या हुआ क्या हुआ, कैसे वृक्ष गिरे, बड़ा अपशकुन हो रहा है, कोई भूत गिरा दिया, क्या हुआ। तो बच्चों ने कहा कि ये जो कृष्ण बीच से गया, इसने उखल को खींचा तो ये वृक्ष गिर गए। तो दूसरे लोग नहीं माने, नहीं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बालक के अप्रतिम प्रभाव को नहीं जानते थे। बच्चों ने ये भी कहा कि जब वृक्ष गिरे तो इससे दो देवता निकले, दूसरे ब्रजवासी नहीं देखे, केवल बच्चों ने देखा था। और लोग कहे कि वो लोग प्रणाम किए, परिक्रमा किए, लेकिन कोई ब्रजवासी माना नहीं इसको, कहा फालतू बात करते हैं इस तरह से। बच्चों के प्रवचन पर कौन विश्वास करेगा, कुछ भी बोलेंगे बिना ज्ञान के बिना बुद्धि के। और तो बच्चे तो देखे थे। फिर नंद बाबा आए, नंद बाबा आते ही हंसने लगे और बच्चे को खोल करके गोद में ले ली। इस तरह भगवान ब्रजवासियों को लीला दिखा दिखा कर आनंदित करते थे। आज कथा को हम यही विश्राम देते हैं। कथा का अंत नहीं होता है, विश्राम होता है। आप लोगों ने सुना होगा, विश्राम का मतलब होता है कथा विश्राम कर रही है फिर जगेगी। और संस्कृत में जो समाप्त अर्थ होता है उसका अर्थ खत्म होना नहीं होता है। सम का अर्थ होता है सम्यक और आप्त का अर्थ होता है प्राप्त। आज अच्छी तरह से प्राप्त हुई कथा, समाप्त का ही मतलब होता है। इसका अर्थ ही नहीं होता खत्म हो गई, आज परफेक्टली प्राप्त हुई कथा, ये अर्थ। तो इस तरह से आज कथा समाप्त हुई, ये कथा का विश्राम हुआ। तो मैं यहाँ पे श्रोता बंधुओं को अनेक सह धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरा मान रखा, मुझे मान दिया, धैर्य से इतने देर तक बैठ करके आप सुने और भगवान श्री कृष्ण के निकटता का अनुभव किए, उनकी लीला के साथ रहे। लेकिन हम लोग तो एक मायावती जीव है, तुच्छ जीव है, भगवान की लीला वर्णन करने में भी कभी कभी जो अपना स्वभाव है, हृदय की गंदगी है, वो तो भाषा में आ ही जाती है। कभी कठोर शब्द निकल गया है, उसके लिए आप हमें क्षमा करेंगे। और श्रोताओं के साथ साथ हम उन बंधुओं को हृदय से आभारी हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया, जिनका धन इसमें लगा। आज का कोई भी काम होता है तो उसमें धन जरूर लगता है, क्योंकि कोई भी काम किसी जंगल में तो हो नहीं रहा है, न्यूयॉर्क सिटी में हो रहा है। यह प्रत्येक काम धन द्वारा साधित होता है। तो इस भागवत के प्रोग्राम में भी धन लगा, शरीर लगा, मन लगा, परिवार के सभी बच्चे लगे, ऐसे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। सबको धन्यवाद है और विशेष रूप से हम उनके आभारी हैं जिन्होंने इसको स्पॉन्सर किया है, जिनका धन लगा इस कार्य को सफल बनाने में। यह भगवान की कृपा है, कृष्ण की कृपा है कि उनको प्रेरित किया भगवान ने।